इसलिए अगर देखा आजकल किसी बिजनेस में सबसे अधिक लाभ डॉक्टर को है। डॉक्टर बहुत जल्दी मालूम हो जाता है मैं डॉक्टर बनूंगा। इस तरह से लोग वो एक स्थिर करके उसी तरह से चलता है। ऐसे ही इस राज्य में भक्ति राज्य में एमएम ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ एक स्थिर करके चलता है। उत्तरा देवी का जो प्रश्न था वो मैं स्त्री जाति मैं भागवत सुनी किंतु समझ नहीं पाई आज इसका सार बताए। जन्मेजय के प्रति महर्षि जैमिनी ने जो उपाख्यान का किया था एक तरह से यह महाभारत का उपाख्यान है अंश है किंतु उसका सार है। यहां तक कि श्रीमद् भागवत का भी ये सार है। इसी देश का नाम हुआ बृहद भगवतामृत। दोनों खंडों में एक एक महापुरुष पहले में नारद जी स्वयं और दूसरे में गोप कुमार ये अपनी अपनी अनुभूति को एकदम प्रारंभ से अंत तक देकर के जगत के कल्याण के लिए उन्होंने वैष्णवी साधना के प्रथम सोपान से श्रद्धा से लेकर और चरम सोपान ब्रज प्रेम लाभ गोपी प्रेम लाभ तक उस दोनों को लेकर के दिखला करके जगत के लिए आदर्श रखता है। ऐसे ही भजन करना है हमको। भजन की पराकाष्ठा ये है। गोप कुमार की विशेषता ये है प्रारंभ से गुरु के प्रति एकदम दृढ़ सब जो कुछ कहा वही कुछ तर्क वितर्क का नहीं। गोपकुमार श्री गुरु दत्त मंत्र साधन के बल से जितने ही उन्नत स्तर में जा रहे हैं पहले होता है तृप्ति होती है और फिर अतृप्ति हो जाती। नारायण के यहां गया तृप्ति हुई बस अब कहीं नहीं जाऊंगा हे मंत्र तुम यही गा अब साथ अब कुछ दिनों के बाद में मंत्र जपने से उसमें त्रुटियां दिखाई प्रभु के समीप में नहीं जा सकता प्रभु को गले से लगा नहीं सकता उनको खिला पिला नहीं सकता। ये तृप्ति और अतृप्ति ही साधन में उन्नत ले होता है। जब कनिष्ठ वैष्णव रहेगा तो मध्य में आने लगा तो बहुत आनंद हुआ किंतु कुछ दिनों के बाद में अपनी त्रुटियां दिख पड़ती हैं जैसे ये हमारे अब उसे तृप्त नहीं होकर के आगे यदि तृप्त हो गया तो साधन भजन कर। इसलिए साधन में भक्ति लाइन में तृप्ति का कोई प्रश्न नहीं। कभी तृप्ति हुई तृप्ति हुई इसके बाद में तृप्ति देने के बाद में इंद्रत्व प्राप्त हुआ इंद्र बन गए त्रुटि हे ब्रह्मा बन गए फिर वैकुंठ लोक में गए राम के पास में गए अयोध्या में गए फिर वहां से द्वारका में गए कहीं भी पहले तृप्ति होती है कि तृप्ति और अतृप्ति के बीच में समस्त सोपान को अतिक्रम कर अंत में ब्रज में परिपूर्णता लाभ कर जगत में ऐसा ही पहले आदमी को श्रद्धा होती है थोड़ी तो किसी एक व्यक्ति के पास में जाता है कभी तो बहुत अच्छे वैष्णव है थोड़ी देर के बाद में देखता है जब वो सुनता है भागवत इत्यादि भाई मैं स्वार्थ है उच्च कोटि का जो मैं चाहता हूँ ऐसा प्रेम नहीं तो उनको छोड़ करके आगे फिर उनके साथ में कुछ दिन रहा उसके बाद में भी मन नहीं लगा होते 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 शुद्ध गुरु के पास में आदमी को और जिसका संस्कार वैसा हो तो एकदम डायरेक्ट प्रभु को पहुंचा ऐसे गुरु पदार्थ मंत्र के प्रभाव से और साधना के फल से ऐसा फल है सनातन गोस्वामी ने इस चीज को लिख रहा है। कैसे गुरु कुमार में मंत्र के प्रति कैसी निष्ठा हम तो रोज ही पूछे महाराज और कोई मंत्र है जो मंत्र अरे मंत्र तो एक ही है वो भी दशाक्षर ही था तब हमारे गुरुवर्ग ने उसको अष्टादशाक्षर कर वो चाहते हैं कि और कुछ जल्दी मैं देख लूं, अरे आंख में देखने का वो है नहीं, इसलिए साधन करो तो जैसा इन लोगों ने साधन किया उसको विश्वास इसी के द्वारा होता है। भागवत जीवन में जो अक्षय अव्यय शाश्वत और चित प्रगतिशील, प्रगतिशील का प्रगतिशील माने बस हो गया स्टैग्नेंट, ऐसा नहीं नदी की धारा की तरह निरंतर एकदम समुद्र तक जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो धारा नहीं, ऐसे जब तक प्रभु का प्रेम न मिलेगा तब तक से इस तरह से इस भक्ति के स्तर को दिखलाया। इसमें सबसे पहले अहेतु की महत्कृपा होगी, अहेतु की महत्कृपा क्या, कोई महत्पुरुष है भगवान का भक्त है अहेतु बिना किसी कारण पर दया कर दी क्या, किसी तरह से यहां आ गए कहे अरे जल्दी से इनको प्रसाद थोड़ा सा दो तो प्रसाद दिया, अपने पास में बैठा लिया, प्रेम तो कम भगवान की पूजा बताए, यह क्या नीति है। इस तरह से उसको सम्मान कर दे करके पहले, अरे भाई चेयर जाओ बैठाओ इनको, ठंडा ठंड नहीं पिलाओ, कभी की लस्सी पिलाओ, ऐसा करो ऐसा करते 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 ये उनके चित्त ये उनकी कृपा। और धीरे धीरे सुनाते सुनाते तब महत सेवा की बुद्धि पैदा की, महत सेवा की माने क्या, ये ठाकुर जी के लिए कोई सेवा किया, वैष्णव को कुछ भोजन दिया, वैष्णव के लिए कुछ कपड़े दे दिए जो उनको जरूरत, इस तरह से सेवा की। सेवा करते करते अब सेवा की वृत्ति बढ़ी, पाजी भाई मैं तब दीक्षा लूंगा, अभी तक तो ऐसे ही कर रहा, अब दीक्षा लेंगे उसकी आवश्यकता समझेंगे, दीक्षा के बाद में हम मंत्र जपने लगे, सेवा भी होने लग गई, अब श्रवण कीर्तन भागवत का भी होने लगा, तुलसी की परिक्रमा होने लगी, ठाकुर जी का दर्शन आरती कीर्तन ये सब होते 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 उसके अंदर में जितने अनर्थ थे वो दूर होने लग गए। अब साधु संग जो है अवसर, अब तक समझ में नहीं आ सकता, अब साधु संग का तात्पर्य भी है। अब जब ठाकुर जी का दर्शन करता है दूसरे रूप में करता है, पहले दूसरे रूप में था अब दूसरे रूप में, सालक राम उसे अधिक रुचि है चतुर्भुज में, फिर उनसे भी नारायण में, इसके बाद में जगन्नाथ जी है, इसके बाद में वामन जी जगेश्वर है, सब लोग में परमात्मा आनंद, सब लोग में ब्रह्मा जी के रूप में सहस्त्र शीर्षा हजारों दौर में। इस तरह से वहां तक पहुंच करके अब फिर मूर्ति में और भक्ति में क्या अंतर है, अब ये आए अभी तक कनिष्ठ अधिकार, कनिष्ठ वो मूर्ति को सेवा को ही अधिक मानता है, भक्ति का भी और भक्तों को भी प्रधानता नहीं दे, अब धीरे धीरे भक्तों की प्रधानता देगा शिव विग्रह से, क्योंकि यही लोग सब तत्वों को बतलाने वाले हैं, कृपा करने वाले, अब उनके दृष्टि से अब ठाकुर जी का दर्शन करना आरंभ किया। इसके बाद में स्वरूप की अनुभूति, मैं कौन हूं, इसके बाद में भक्ति होती है, फिर भवन नाम कीर्तन करता है, रूप गुण लीला का अनुशीलन करने लगता है, इसके बाद में गौरव इच्छा भक्ति होती है, ऐश्वर्य और माधुर्य की अनुभूति, भगवत अनुभव, भक्ति रसास्वाद, वैकुंठ की प्राप्ति, इसके बाद में धीरे 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 कृष्ण की प्राप्ति, द्वारका में सौहृद भाव नर्वक भाव, हमारे ये पिता हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे सखा हैं, इसके बाद में इस तरह से क्रम विकास किसमें होता है। ऐसा ये ग्रंथ है जिसमें लीला रस भाव सिद्धांत एक कथा में सभी कुछ वैष्णवों के लिए जो चीज है इस ग्रंथ में, इसलिए खूब आदर के साथ में उसको सुन करके पढ़ करके भगवान के चरण में भक्ति करें और हम लोग भक्ति राज्य में बढ़े। यही आज एक बार पंचाप
ब्राह्मण बालक के रूप में सर्वत्र भगवत दर्शन कर रहे हैं,
भाव भक्ति भी उनको हो गई है या इसे ऊपर परमहंस अवस्था में चले गए। तो उन्होंने देखा उनको जबरदस्ती पालकी में लगा दिया गया राजा का, राजा की पालकी में जबरदस्ती उनको बेगार के रूप में लगा दिया। तो लगा दिया गया तो लग गए, राजा पालकी पर चढ़ा हुआ उनसे ताने मार रहा, क्यों नहीं चल रहा ठीक से। कालू ने कहा हजूर ये नया है, इसको चलने नहीं आता, पैर में पैर नहीं मिलाता, इसके ये पालकी होती है, ये चलता क्यों नहीं ठीक से, न जाने क्यों नहीं चलता। उन्होंने डांटा वहां से, अरे तो चल नहीं पाता, बहुत दुबला पतला हो गया है, चल नहीं पाता, खाया पिया नहीं, ताने मार ले करके तभी नहीं सुना। तो फिर जरा कस करके डांटा, जानता नहीं है, दंड दूंगा अभी, मैं राजा हूं, ऐसा दंड दूंगा जो तुम याद करेगा। तो वो बोल दिया उन्होंने, यदि दंड है तो देने के लिए, और दंड यदि है तो ग्रहण करने के लिए, किंतु ये राजा कौन है और प्रजा कौन है, कौन दुबला और कौन पतला, कौन दुख भोगता कौन क्या, ऐसे कुछ प्रश्न किए जिनके समझ में नहीं आए। कहीं इसी के लिए तो मैं जा रहा, और पालकी से कुछ पड़े और उनके चरणों में सिर झुकाया, आप कौन है, आप कहीं कपिल देव तो नहीं है जिनके आश्रम में जा रहा, या कपिल देव कभी कभी अंतरिक्ष इत्यादि अथवा चतुर्सन, कौन आप जो अपने को छिपाए हुए इस प्रकार से चल रहे हैं, कौन है आप? ऐसे मालूम होता है कि किसी भस्म में आपको छिपा दी। तो मुस्कुरा करके बोले उनको, तुम जानता है तुम्हारे वंश में कोई भरत नाम के राजा थे, मैं वही भरत नाम का राजा हूं जो बचपन में ही संसार को 50,000 वर्ष की बचपन की आयु में ही मैंने संसार को बलवत त्याग कर दिया और बहुत कठिन में लग गया था, बस यही हमारे पुरुष वाले हैं, बस उनके चरण में मैंने यही सब विषयों के लिए उठे हैं। तब उन्होंने इस चीज को क्लियर किया, साफ किया, ये जीव कौन है, आत्मा क्यों है, ये भोग कौन करता है, किसको कष्ट होता है, ये सब चीजों को उनको क्या जरूरत थी, भरत राजा को ऐसा भरत महाराज को करने को उनको शिक्षा देने की, इसी का नाम है अहेतु की महाकृपा। ये उनको कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं बोलते या वहां पर छोड़ करके चले जाते, क्या जरूरत, यही है महाकृपा। अब इनका अधिकार जब विचार करेंगे तो उत्तम भागवत नहीं कह करके यहाँ पर विचार करेंगे मध्यम अधिकारी, यदि उत्तम अधिकारी है तो उत्तम अधिकारी से नीचे उतर करके ये काम करो, ये दीक्षा मंत्र इत्यादि देना ये सब मध्यम अधिकारी का काम, ये भजन नहीं कर रहा है, ये भजन कर रहा है, ये मूर्ख है, ये अज्ञानी है, ये तत्वविद है, ये कौन विचार करता है, भगवान नहीं करते। और जो उत्तम महाभागवत है वो सबको देखते हैं कि ये किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा या कर रही है, इसलिए किसी को उपदेश देने की उनको जरूरत है, सुखदेव गोस्वामी को किसी को उपदेश देने की जरूरत है। तब जब सब लोगों ने उनको पकड़ा, उनके गुरु जी ने पकड़ा, व्यास जी ने, नारद जी ने, और सब लोगों ने जब पकड़ करके उनको बैठाया, तब भगवान की कथाओं को के लिए प्रश्न जब किया तो अपने आप कैसे किसी को क्यों नहीं देते, उनके लिए क्यों आशा किया, उनको दिया। तो ये उत्तम अधिकारी के लिए भी वही दोष है, यद्यपि इनका भी ये गुण है कृपा परवश है कभी दोष क्यों ने उनको दिया, उनको दिया परीक्षित महाराज जी को क्यों दिया, या उस सभा में थे उनको क्यों दिया, और जगह जगह प्रचार करते जैसे हम लोग प्रचार करते हैं तो प्रचार क्यों नहीं किया उन्होंने। उत्तम भाव वो सबको देखते हैं कि कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं। मध्यम अधिकारी के चार गुण हैं प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा जो पड़ोसी सम भगवान के प्रति प्रेम और कृपा न प्रेम मैत्री मित्रता, उनकी मित्रता तीन प्रकार की होती है, ऊंचों से सेवायुक्त मित्रता उत्तम अधिकारियों के साथ और अपने बराबर वाले जो है मध्यम अधिकारी हैं उनसे मैत्री युक्त मैत्री सख्त युक्त मैत्री, और अपने से जो निम्न है उनके लिए मैत्रता होगी किंतु दयापूर्वक होगी, दया से मित्र दया से युक्त तीन प्रकार, और कृपा और उपेक्षा। उपेक्षा क्या, उपेक्षा माने जो भगवत विरोधी हैं भक्ति नहीं चाहते हैं उनकी उपेक्षा, उनको कुछ किसी तरह से पूछने पर भी नहीं बदलाए, जानते ये ग्रहण नहीं कर, ये इनके अधिकार प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा। अब इसमें यह यदि मध्यमाधिकारी होकर के नहीं करता है तो ये दोष है, ये चार प्रकार के उसके भेद दृष्टि में रहेगा, ये भगवान है और ये हमसे श्रेष्ठ हैं, ये हमारे बराबरी वाले हैं, ये हमसे कम हैं, ये कृपा करने के योग्य हैं और ये उपेक्षा की, उनकी दृष्टि में भक्त विरोधी तत्वज्ञानी ये सब उसके दृष्टि में, इसलिए वो कृपा करते हैं इनके लिए, इसलिए ये जो कृपा करते हैं ये दोष नहीं है, दोष नहीं है, इसलिए क्या बल्कि इनका गुण है और इनका कर्तव्य भी यही है कि जो नहीं जानते हैं उन पर कृपा करके, जो श्रद्धालु अंततः है उनको कृपा करें, और मध्यम कोटि के हैं तो वो तीन प्रकार से व्यवहार करेंगे, मित्रता युक्त दया, मित्रता युक्त बराबरी भाव, मित्रता युक्त सेवा। ऐसे ही मध्यम अधिकारी के लिए ये बताया गया है ये लोग उत्तम अधिकारी के प्रति कैसा भाव रखेंगे, निंदा परम बंधु जान करके उत्तम भागवतों को ये मध्यम अधिकारी समझ करके परम बंधु दे, क्यों ये निंदा नहीं किसी की करते, स्तुति नहीं करते, वो लोग उत्तम अधिकारी को पहचान सकते हैं, हम लोग नहीं पहचान सकते, कभी कभी कनिष्ठ अधिकारी मध्यम कभी कभी मध्यम का कनिष्ठ ये भी नहीं समझ सकते, इसलिए उत्तम भागवतों को समझने के लिए अंततः मध्यम का उत्तम होना चाहिए, तब उनको कृपा को समझ सकते हैं, उनको पहचानिए है ये किस कोटि के विषय। यदि वो राजा कौन रघुगण राजा यदि इतना उन्नत नहीं होते तो इनको नहीं पहचान सकते, वो भी मध्यम अधिकारी थे रघुगण राजा मध्यम अधिकारी, क्योंकि तत्व ज्ञान के लिए जा रहा है, किंतु हो सकता है कि मध्यम का कनिष्ठ या मध्यम, और ये है मध्यम के, इसलिए वो समझ सके दूसरा नहीं समझेगा। अब हम लोग के यहाँ कोई उत्तम अधिकारी आए हम लोग समझ नहीं सकते उसके व्यवहार से, किंतु मध्यम अधिकारी रहेगा तो उसको कुछ कुछ पहचान सकते हैं, इसलिए यहाँ अहेतु की महत्ता महत्व भी ऐसा हो। मत किसको कहते हैं, मत शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया, महान से महत, कृष्ण है उनको जो आश्रय करने वाले हैं वो महत है, और उसमें भी इस कोटि का पहुंच गया जो अंततः मध्यम का उत्तम हो, ऐसा मध्यम का मध्यम रहेगा वो कृपा करेगा, किंतु शास्त्र विचार से लेकर के हमको कहा समझा करके संसार से वैराग्य और भगवान के प्रति प्रीति लाने के लिए ये चेष्टा करें, शक्ति संचार नहीं कर सकते, शक्ति संचार कौन करेगा, उत्तम भागवत है वही करेगा, नारद ऋषि करेंगे सनातन इत्यादि ये सब लोग शक्ति साथ किसी के ऊपर हाथ ऐसे कर दिया जैसे कल तक हमने बताया था, गोप कुमार में जनतमा के ऊपर में शक्ति का संचार, नारद जी ऐसा कर सकते, सुखदेव गोस्वामी ऐसा कर सकते, हमारे महाप्रभु के जितने परिकर हुए ऐसा कर सकते, मध्यम अधिकारी ये करेगा तब तो ज्ञान के द्वारा और शास्त्रों के विचार के द्वारा ये सब ज्ञान तत्व होगा।
ये भी कम में यही गुरु तत्व है।
और भी अहेतु की कोई हेतु नहीं, हेतु तो था इनको क्रोध होना चाहिए, किसको? भट्ट महाराज जी को क्रोध होना चाहिए था, उनको डांटा फटकारा और उसमें लगा दिया पालकी में, तो ये क्रोध होना चाहिए था, तो क्रोध नहीं हो करके हंस करके अब बड़े प्रेम से उसके ऊपर लिखा, ये अहेतु। अहेतु किसको कहते हैं? इसका कोई हेतु नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनका हेतु क्या था? इसका हेतु था जो राजा था रघुगण, इसका हेतु था ज्ञान शिक्षा, तत्व ज्ञान के लिए लिया, किंतु इनको क्या हेतु था कि उनको बतलाएंगे? कोई हेतु नहीं, इसलिए वो बिगड़ सकता है सोता, किंतु ये नहीं बिगड़े। इनका प्रेम है कैसा, प्रीति कैसी है, इनकी कृपा कैसी है, कहे इस चीज को हम लोग नहीं समझ पाते, इस चीज को समझना चाहिए। ये समझ में आएगा भी नहीं, जब आएगा, जब मध्यम अधिकार आते आते ऐसे ऐसे महापुरुषों की सेवा करेंगे तो ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। और भी अहत की नित्यानंद प्रभु जी हरिदास जी जाने, नित्यानंद प्रभु को वहां जाने के लिए क्या जरूरत? सभी लोग मना कर रहे हैं, क्या जरूरत है? कोई जरूरत तभी क्यों गए? उसे कुछ लेना देना था, उसको मान ले कि हरिनाम में यदि प्रवृत्त करेंगे उनको क्या लाभ होगा? कोई भी लाभ नहीं, ये है। अच्छा, उसने मारा क्यों? हेतु था कि नहीं?
हेतु था
इसलिए मारा। अच्छा, बेश्या गई हरिदास ठाकुर के यहाँ, फिर रात हरि कथा सुन, किस लिए? हमको बहुत इनाम पुरस्कार मिलेगा, राजा का राज्य हमको मिल जाएगा, यदि हरिदास ठाकुर के हमने पतित करा दिया, इसलिए वो तीन रात तक जा रहे हैं। आशा कि अब हरिदास ठाकुर कहेंगे साढ़े कितना 3 करोड़ नाम की 1 करोड़ नाम हमारा पूरा होने वाला है। हरिदास ठाकुर क्या देख रहे हैं? भगवान का नाम बदनाम न हो गया, अहेतु की कृपा है, कोई हेतु नहीं है हरिदास ठाकुर में, इसलिए तीन रात सुनने के बाद में अपने आप नाम के प्रभाव से उसका चित्त एकदम बदल गया और महासाधु मिले, जिसके बड़े बड़े संत लोग इसलिए दर्शन कर उसको अश्रु अंतर्मन इत्यादि कुछ दिनों के बाद में होने लगे, अनर्थ की निवृत्ति संपूर्ण रूप से हो गई और परम साधु। यह हरिदास ठाकुर की ये कृपा, ये है अहत की कृपा। ऐसे ही जहां भी कृपा ऐसा देखें, हनुमान को विभीषण के यहां जाकर के उनको भक्त बनाने के लिए क्या जरूरत थी? हनुमान जी को सुग्रीव के पास में रहने की क्या जरूरत थी? ये सब है, जब महत कृपा होगी, महत कृपा का लक्षण क्या है? उनके संग से महत सेवा में रुचि होगी, महत सेवा में रुचि होगी। महत ऐसे जो महापुरुष हैं, जो भगवत भक्त हैं उच्च कोटि के, उनकी सेवा में रुचि होगी, तो वो सेवा करेंगे। क्या सेवा करेंगे? सेवा किसको कहते हैं? जो संत है उनकी प्रीति किस काम में हो, वो क्या चाहते हैं, उसके अनुसार में कार्य किया जाए, तो उसको कहते हैं। हम अपने मन से जो करते हैं वो सेवा नहीं भी हो सकती है, वो जो चाहते हैं उसमें यदि किया गया तो वो सेवा, उनको कैसे उनकी प्रीति हो, कैसे वो खुश हो। यदि वैष्णव नहीं रहे तब तो रुपया पैसा से प्रसन्न हो जाएंगे, कोई वस्तु से प्रसन्न हो जाएंगे सहज, कोई बहुमूल्य उनको चीज दे दी उसे प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि सच्चे संत होंगे तो वो किस चीज से प्रसन्न होंगे, उसकी श्रद्धा को देखें, उसकी सेवा की वृत्ति को देखें, सेवा के उपकरणों को देख करके नहीं
वृत्ति को देखते,
वो वृत्ति देखते हैं। एक आदमी बड़े प्रेम के साथ में वो आजकल खट्टा गोला गोल गोल होता है
हलसा
हलसा, वो बड़े प्रेम से लाया है, एक आंवला का फल लाया है, या आजकल आम बहुत विचार देखा बाजार में, ये आम बहुत सुंदर मिल रहा है, उसने बड़े प्रेम के साथ लाया जैसे उनको दिया गया। संत लोग उनकी प्रवृत्ति को देखते हैं, सेवा की वृत्ति को, और उसमें कुछ अपना अपनी प्रतिष्ठा झलकाना हुआ भीतर से, तब तो इसलिए वस्तु नहीं उसके प्रति के भाव को देखेंगे, सेवा की भावना को देखकर वो प्रसन्न होंगे।